ओम शांति। आज हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप उत्तर प्रदेश की धरनी से कानपुर के पास स्थित एक छोटे से गांव से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। घर में गीता पाठशाला होने के कारण बाल्यकाल से ही ईश्वरीय वातावरण में रहते हुए आप बड़े हुए लौकिक और अलौकिक दोनों ही पढ़ाइयाँ उस ईश्वरीय वातावरण में होती रही और फिर 1971 में आप पहली बार मधुबन धरनी पर पधारे और यहाँ की छाप आपके दिलों दिमाग में ऐसी पड़ी कि लौटने का मन नहीं हुआ। लेकिन कुछ छुट्टी आदि, परमिशन आदि की जो नियम होते हैं वे नहीं होने के कारण पुनः आपको वापस घर जाना पड़ा और फिर जब 1972 में आए तो पूरी परमिशन आदि लेकर आए और तब से लेकर इस धरनी पर आप समर्पित होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में आप जो डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं उसको कौन सा डिपार्टमेंट कहते हैं? 1976 में इस डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई, अर्थात ये कार्य आपको सौंपा गया और तब से लेकर आज दिन तक ये मुरली को जो सिंधी में हुआ करती थी उसे हिंदी करना और सेवा केंद्रों को पोस्ट करना, तो वो तब से लेकर आज दिन तक इस सेवा को बखूबी आप निभा रहे हैं और यही कारण है कि पूरे ब्राह्मण परिवार में आपकी प्रसिद्धि किस नाम से है? मुरली वाले राजू भाई। तो मुरली वाले राजू भाई चूंकि है ही मुरली वाले, तो आप सभी को पता होगा कि एक टॉक शो है अमूल्य रतन, अव्यक्त मुरलियों के आधार से। आप सभी उसको देखते होंगे। करीब 1300 से भी अधिक एपिसोड आपने पार कर लिए हैं और आप सभी उसका बहुत बहुत लाभ लेते होंगे। इसके साथ साथ आप हमारा जो ग्रामीण प्रभाग है उसके वाइस चेयरपर्सन हैं, जिसके अंतर्गत शाश्वत खेती का एक नया प्रोजेक्ट, एक नया कंसेप्ट आपने पूरे समाज को दिया है और जिसमें काफ़ी प्रगति हो रही है। और ज्ञान और ये शाश्वत खेती दोनों को लेकर आप पूरे भारत भर में तो क्या विश्व भर में भ्रमण करते हैं और बाबा का संदेश और कैसे बाबा की ज्ञान और योग से हम शाश्वत खेती करके हम वो सतयुगी खेती को पुनः लौटा सकते हैं, इस कंसेप्ट को जन जन तक पहुंचाते रहते हैं। इसके अलावा जो मधुबन के अंदर फोटोकॉपी डिपार्टमेंट है, स्टेशनरी है आदि आदि भी आप ही संभालते हैं, पत्र पुष्प आदि भी जो सेंटरों पर भेजे जाते हैं। इतना ही नहीं, बाबा की मुरलियों में से छोटी छोटी पुस्तिकाएं भी आप तैयार करते रहते हैं जिसका लाभ सारा ब्राह्मण परिवार लेता है। तो आज प्रत्यक्ष में लाभ लेने के लिए, लाभ देने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। बहुत सुंदर विषय है जो आज बाबा ने कहा। क्या कहा आज बाबा ने? बाप क्या है आज? क्या कहा? पहाड़ है। हाँ, स्वीटनेस का पहाड़ है और हमें भी बाप समान बनना है। तो बाप समान स्वीटेस्ट बनने की विधि क्या है, इस पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। बाबा के इस वरदानी भूमि पर आप सभी विशेष योग तपस्या करके अपने आप को बहुत खुश नसीब अनुभव करते होंगे। ये तपस्या हमारे अंदर के खारेपन को समाप्त करके मीठा बना देती है। हम इसीलिए योग करते हैं कि जो भी देह अभिमान के कारण खारापन आ गया है, विकार आ गए हैं, बुराइयां आ गई हैं, वो सब समाप्त हो जाएं और हम सब बाबा के समान अति मीठे अति प्यारे बने। हमारा बाबा जैसे स्वीटेस्ट है और ऐसा स्वीट बना देता है जो हमारे मंदिरों में देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। क्या पाते हैं? उनका एक बहुत सीधा सरल व्यक्तित्व जिसमें मुस्कान है, जिसमें सरलता, मधुरता, दिव्यता, कई गुण के चित्रकारों ने उस मूर्तियों में भी भर दिए हैं। तो बाबा हम बच्चों को चैतन्य में ऐसा स्वीट बना रहे हैं। स्वीट का पहाड़ बाबा खुद ही है और पहाड़ की विशेषता यही है कि वो कहता है मैं सदा पावन हूं। जो सदा पावन है वही स्वीट का पहाड़ है और जब उसमें कोई भी मिक्स चीज हो जाती है तो वो स्वीट टेस्ट से बदल करके कुछ न कुछ खारापन कड़ुआपन उसके अंदर आने लगता है देह अभिमान के कारण। तो हम सभी वर्तमान समय जितना बाबा की याद में रहते हैं, जितना इन विकारों पर जीत प्राप्त करते हैं, उतना स्वीट बनते जाते हैं। बाबा ने आज पूरी मुरली ही इस पर चलाई है, आप सबका ध्यान गया होगा। बाबा उन बच्चों को देख करके बहुत खुश होते हैं जो सदा मुख से ज्ञान रतन निकालते हैं, जो ज्ञान रतनों से खेलते हैं। इसका भाव क्या हुआ? जिनके मुख से कभी भी व्यर्थ बोल नहीं निकलते, किसी की ग्लानी के, पर चिंतन के, पर दर्शन के बोल जो नहीं बोलते हैं, सदा ही ज्ञान रतन ही मुख से निकलते, उसको आज बाबा ने एक दूसरा भी टाइटल दिया, ऐसे मेरे बच्चे रूप और वसंत हैं। रूप और वसंत की जोड़ी गाई हुई है। जानते हो कौन थी रूप वसंत की जोड़ी मधुबन में? दीदी और दादी, रूप बसंत की जोड़ी थी। कौन रूप था, कौन बसंत था जी? अच्छा, दीदी रूप थी। कैसे रूप थी? रूप की क्या विशेषता थी? गंभीर थी दीदी, गंभीर ही नहीं लेकिन अंतर्मुखी थी। योग बहुत शक्तिशाली था, एक सेकेंड में भी सामने वाली आत्मा को फट से दृष्टि देती, परख लेती थी। तो दीदी रूप थी और दादी बसंत, बसंत माना जिसके अंदर ज्ञान का बहुत अच्छा मनन चलता है, चिंतन चलता है, जो ज्ञान सुनाने में बहुत प्रवीण है। तो दीदी ने कभी भाषण नहीं किया, क्लास भी नहीं कराई, मुरली भी नहीं सुनाई, और दादी इसमें सबसे नंबर वन थी। इसलिए दीदी और दादी की जोड़ी रूप और बसंत की थी। लेकिन आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं स्वीटेस्ट कौन थे। कुछ प्रैक्टिकल बातें आपको बताता हूं, उस किस क्वालिटी की आत्मा को हम कहेंगे स्वीट है, बहुत स्वीट है। वैसे बोल देते हैं आप बहुत स्वीट हो, जिनकी वाणी मधुर है, जिनके चेहरे पर कोई भी हाव भाव अलग प्रकार का नहीं, नेगेटिव नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति भी व्यर्थ सोचता है, नेगेटिव चिंतन चलता है, कोई भी प्रकार के ख्यालात में बहुत तीव्रता है, फास्ट है, तो उनका जो आभा मंडल है वो बाबा कहता अंदर का दर्पण चेहरा है, जो अंदर चलता है वो चेहरे पर भी आ जाता है। तो ऐसी कई आत्माएं होती हैं जो बाहर से भले अच्छी अच्छी बातें करती हैं लेकिन अंदर जो चलता है उनका चेहरे से हाव भाव पता चलता है। तो इसलिए वो स्वीट हैं या नहीं हैं, कई बार कहते हैं देखने में तो बड़े स्वीट लगते हैं लेकिन अंदर एक है, अंदर एक है बाहर दूसरे हैं, मुख में राम बगल में छुरी, ऐसे कहावत है। माना ऊपर ऊपर से तो इतना मीठे हैं, इतने प्यार से बात करते हैं जैसे इनके जैसा तो कोई है ही नहीं, और अंदर अंदर पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें, कैसे इसको नीचे दिखाएं, कैसे इसको नीचे गिराएं, जिसके अंदर सूक्ष्म में भी ईर्ष्या भाव है, जलन है, जेलसी है, वो कभी स्वीट नहीं रह सकता, भले ऊपर से दिखाए मैं बहुत स्वीट हूं, लेकिन अंदर ही अंदर दूसरों के आगे बढ़ने में उसकी खुशी गायब हो जाती है, दूसरों को खुश नहीं देख पाता और उसको देखते ही उसके अंदर जो उत्पत्ति होती है, अंदर ही अंदर ऊपर से बड़े मीठे से व्यवहार करेगा, प्यार से बोलेगा, लेकिन अंदर से उसको कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे इसको लोगों की नजरों से गिराया जाए, बहुत प्लानिंग चलती रहती है। तो बाबा अपने बच्चों को जो मीठा बनाना चाहता है, स्वीट बनाना चाहता है, उसके पीछे यही भाव है कि किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो जितनी विशेष आत्मा हो, धनवान हो, रूपवान हो, गुणवान हो, स्नेही हो, सहयोगी हो, लेकिन कभी भी उस व्यक्ति से, कोई भी आत्मा से आप भेंट करके उससे ईर्ष्या नहीं करो। हर एक आत्मा का अपना भाग्य है, हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, और उस पार्ट को देख करके अगर हम अपनी खुशी गायब कर दें, हमारे संकल्प विकल्प चलने लगे, उसको आगे बढ़ते हुए देख करके भी हमें ईर्ष्या पैदा हो, जेलसी हो, तो बाबा कहते हैं वो स्वीटनेस नहीं है। इसलिए आज मैं आपको तीन चार दादियों की बातें सुनाता हूँ, क्लासेस तो बहुत सुनते हो। हमारी सबसे स्वीट एक दादी थी, आप लोगों ने नहीं देखा, और उनको हम प्यार से कहते थे क्वीन मदर, नाम तो सुना होगा, दीदी की लौकिक माँ। इतनी स्वीट, इतनी सदोरी, सदोरी सिंधी में बोलते हैं, इतनी प्यारी, सरल स्वभाव वाली, जहां बिठा दो, जैसे जैसे मिलना चाहो मिल लो, जरा भी उसके अंदर कोई भी प्रकार के, दीदी खुद उस माँ को कहते ए क्वीन, ऐसे नहीं कहते क्वीन मदर, हम लोग कहते थे क्वीन मदर, और दीदी बड़े रिस्पेक्ट से, ऐसे क्वीन जाओ इन गोपों के पास, इनके कमरों में जाओ, देखो ये कैसे रहते हैं, इनके कपड़े कैसे हैं, ये कोई टूटे फूटे कपड़े हों तो ले आओ उनको सिलाई करके दे दो। इतनी बड़े धनाढ्य परिवार की वो माता, जिसके बच्चों के जसलोक हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन बाबा के बनने के बाद जरा भी कोई अहंकार नहीं, पैसे का, पोस्ट का, परिवार का, इतनी स्वीटनेस। अगर जरा भी कोई को अपने किसी भी विशेषता का अभिमान हो, अहंकार हो, धन का, पैसे का, पद का, पोजीशन का, या मेरी बेटी इतनी बड़े पोस्ट पर है, उसका भी कई बार अहंकार आ सकता है। दीदी मुख्य प्रशासिका बन गई, आपको मालूम होगा दीदी मनमोहिनी मम्मा के बाद बाबा की राइट हैंड वही एक मुख्य प्रशासिका थी। मम्मा ने 65 तक यज्ञ को मुख्य प्रशासिका के रूप में आगे बढ़ाया, संभाला, लेकिन जब वो अव्यक्त हुई तो बाबा ने दीदी को दिल्ली से मधुबन में उनकी ही चारपाई पर रखा, और यहां ही वो रह करके, इसी कमरे में रह करके, जो ईश्वरीय नियम मर्यादाएं लव और ला का बैलेंस रख करके 65 से 69 तक बाबा के साथ फुल कंधे से कंधा मिला करके इस यज्ञ की बहुत सेवाएं की, सबको नियम और मर्यादाओं में पक्का किया। जब मैं आया हूँ 671 में, तो दीदी मुख्य रूप से उस समय वही कंट्रोलर दादी प्रकाशमणि जी, जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने उनको हाथ में हाथ दे करके आगे किया, वो तो बॉम्बे में रहती थी, लेकिन दीदी और दादी की जब जोड़ी बनी तो कहते थे शरीर दो हैं आत्मा एक है, जरा भी विचारों में कलेश नहीं, जरा भी कोई मतभेद नहीं, एक ने कहा दूसरे ने माना। मान लो आज कोई कारण से कोई बात हम दीदी के पास गए सुना दिया और दीदी ने उस बात को नियम मर्यादा के अनुसार ठीक नहीं समझा, उस बात को कट कर दिया, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वो डरती बहुत निर्भय थी, कोई भी बात लेके जाओ फट से जवाब देगी, ऐसे नहीं कि हाँ देखेंगे सोचेंगे विचार करेंगे, ये गलत माना गलत। और अगर मान लो कोई समझता है अभी दीदी से तो बोल दिया, अभी मैं दादी के पास जा करके इसका हल अलग ले लूं, आप 10 मिनट के अंदर भी अगर दादी के पास जाओगे और दादी ऐसे देख करके बता देगी तुम दीदी के पास हो के आए हो ना, और जब दीदी के पास हो के आए हो तो दादी क्या दूसरा निर्णय लेगी, जो दीदी ने कहा वही दादी कहेगी। इतना दोनों के विचार एक दूसरे से मेल खाते थे, इसलिए आज यज्ञ जो इतना विस्तार को पाया, इतनी सेवाएं हुई, इतना एक होकर के हम सब रहे, उसके पीछे दीदी दादी का बहुत बड़ा योगदान। लेकिन दीदी की लौकिक माँ क्वीन मदर इतनी सीधी सरल इनोसेंट, अगर कोई भी आत्मा स्वीटेस्ट बनना चाहती है संगम पर तो उसे विकारों से इनोसेंट बनना होगा। अगर जरा भी विकारों के बारे में चिंतन है, भले समझ भी है, लेकिन उसको पता ही नहीं था दुनिया के विकार क्या होते हैं। कलयुग में कोई विकार होते हैं, बुराइयां होती हैं, कुछ होता है, उनसे भी वो इनोसेंट थे। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना, सेंट वो हैं, देवताएं सेंट हैं, क्योंकि विकारों से इनोसेंट है। कलयुग में इस समय संसार में ऐसे इनोसेंट कोई नहीं मिलेंगे आपको। बाबा ने अपने इस परिवार में ऐसे इनोसेंट बच्चों को रखा। गुलजार दादी जी कितनी इनोसेंट थे, आप लोगों ने तो इनका तो अनुभव किया है, देखा है। ऐसे थोड़ी बाबा ने ऊपर से आकर के इस रथ को चुना, बहुत इनोसेंट। कभी कभी दादी के आगे कोई न्यूज दिखाने लग बैठ जाते थे, हम लोग बैठते थे साथ में, ये क्या है, क्या हो रहा है, ये क्यों लोग लड़ रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं, जैसे बिल्कुल दुनिया का बारे में पता ही नहीं है कुछ भी। बात बताना पड़ता है दादी ये पार्टी है, वो फलाना है, वैसे कुछ अंदर नहीं है। संसार समाचार के विषय में कोई ज्ञान नहीं, दुनिया का कोई ज्ञान ऐसा नहीं जो नेगेटिव है। त्रिकालदर्शी है, नॉलेजफुल है, सुदर्शन चक्रधारी है, इतना बड़ा ज्ञान ज्ञानदाता ने उस आत्मा के रथ को चुन करके हमें दिया है। सच्ची गीता का सार, गीता का ज्ञान 48 साल तक जिस तन के द्वारा हम सबको प्राप्त हुआ, ब्रह्मा बाबा के द्वारा साकार मुरलियां चली हो 33 साल 32 साल, लेकिन दादी के द्वारा, गुलजार दादी के द्वारा हमें 48 साल तक इतनी बड़ी ऊंची पालना मिली, जिसके अंदर एक शब्द भी कोई करेक्ट नहीं कर सकता, करेक्शन नहीं की जा सकती, इतना परफेक्ट, हर गुण हर शक्ति दुनिया की हर बात का ज्ञान। और ये भाग्य मुझे मिला जो मैंने वो एक एक शब्द दादी के द्वारा जो बाबा ने बोला वो लिखा है, एक भी शब्द मिस नहीं किया। बाबा अगर 14 घंटे बैठे हैं बोला है तो मैं 14 घंटा लिखा, ये नहीं कहा तुम लिख दो आकर के मैं थोड़ा जाऊं बाहर, बाबा बैठा है, मैं एक शब्द भी मिस नहीं कर सकता। और 76 में तो डिपार्टमेंट मिली, लेकिन 73 से ही दीदी दादी ने मुझे कहा तुम हिंदी वाला है ना, रात भर बाबा बैठता है, तुम बाबा के बाजू में बैठो, जो बाबा बोलते हैं तुम लिखो, क्योंकि बाबा क्या बोलते हैं उस समय माइक तो होता नहीं था और बाबा की अव्यक्त आवाज कोई कैच नहीं कर सकता था, तो मैं बिल्कुल बाबा के गद्दी के बाजू में बैठ करके जो बाबा किसी से बात कर रहा है वो मैं लिखता था, फिर सुबह टाइप करके उसको देता था, तुम्हारे लिए ये बाबा ने बोला, तुम्हारे लिए ये बोला। तो ऐसी इनोसेंट आत्मा को भगवान ने कितना यूज किया, कितना ज्ञान दिया, त्रिकालदर्शी बच्चों को बना दिया, नॉलेजफुल बना दिया, लेकिन उसका सरलता, उसकी नम्रता, उसकी मधुरता, उसकी स्वीटनेस, उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता है। आज तक कोई ने उसकी कॉपी नहीं किया। हम लोग पिकनिक पर जाते थे कभी कभी, दादी कहती थी गुलजार दादी को ले जाओ घुमा के ले आओ पिकनिक करा के, बहुत बार गए हम लोग। जैसे बिठा दो, जहां बिठा दो, मुड़ा है तो ठीक है, नहीं है कुर्सी नहीं है पत्थर पर बिठा दिया, दादी आज कोई हम कुर्सी नहीं लाए, कोई बात नहीं, जैसे आप लोग बैठे वैसे हम बैठेंगे, जैसे खा रहे हैं वैसे खाया, ऐसे बैठी, कोई चीज की डिमांड नहीं, कोई चीज, कोई ऐसे लगता नहीं बहुत बड़ी दादी है और हम लोग छोटे हैं, बिल्कुल मिल करके हंस करके बहल करके। एक दिन एक हम लोग दो गाड़ियों में जा रहे थे पिकनिक करने, पीस पार के जा रहे थे, यहां से ही गए, और जिस गाड़ी में दादी थी उसमें वल्लभ भाई हमारे बैठे थे आगे और बहनें थी, और दूसरी गाड़ी में हम बैठे थे, पांच सात भाई थे, और हमारी गाड़ी सामने किसी गाड़ी के साथ ऐसे टकरा गई, और बहुत जोर से टकराई, बहुत बड़ा एक्सीडेंट जैसे, लेकिन दोनों ने ऐसी ब्रेक लगाई जो गाड़ी पलटी नहीं, दोनों आमने सामने टकराए, थोड़ी थोड़ी चोट आई। दादी की गाड़ी पीछे थी, जब देखा दादी ने ये लोगों की गाड़ी टकराई है तो रुकवाया अपनी गाड़ी। हमारी गाड़ी वाले तो हंस रहे थे, बोल रहे थे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन वो दूसरी वाली गाड़ी वाले वो सब इतना जोर से चिल्लाए जो सारे के सारे आगे लेट गया करके गाड़ी के आगे, और उनको पता चला है ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, पैसा इनसे बहुत मिलेगा, लगा कुछ नहीं था इतना चोट, कुछ न कुछ करेंगे, अब सब चिल्लाए और सब आके गाड़ी के आगे ऐसे सो गए, आके माताएं भी भाई भी ऐसे सो गए। अब दादी चुपचाप उतरी, वो इनोसेंट रूप मुझे भूलता नहीं है दादी का, और ऐसे आई गाड़ी से उतर करके, टोली का डब्बा लिया, बहन को बोला टोली का डब्बा साथ लो और मैं चलती हूं। वो जितने लेटे हुए थे सबको दृष्टि दी, बहुत प्यार से कहा भैया कहां चोट लगी है दिखाओ, कहां चोट लगी है, उठो उठो उठो, और सबको उठाया, अच्छा प्रसाद खाओ ठीक हो जाएगा, अपने हाथ से प्रसाद दिया और सब ठीक हो गए और चले गए उठ कर। हम देखते रह गए कि इतनी बड़ी शक्ति, उनका कोई भाग्य होगा, भगवान के हाथ की टोली खाना होगा, थी तो दादी ही, लेकिन दादी ने ऐसी रूहानियत थी उसमें, इतनी दिव्यता थी, इतनी अलग प्रकार की उनकी दृष्टि थी, और इतना प्यार के शब्द थे, वो मिठास थी, वो मीठापन जो था ना उसने उन लोगों को परिवर्तन कर दिया। अब वो मीठापन हमारे अंदर आ जाए बस, हो सकता है, आ सकता है, आ सकता है ना, संकल्प अगर है तो आ जाएगा, लेकिन उसके लिए दो बातों का ध्यान उन्होंने रखा, बाबा ने वर्णन किया है। उस आत्मा ने अपने संकल्प की एनर्जी को कहीं भी व्यर्थ नहीं किया। संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है, और हम लोग जो देखते हैं जिधर देखते हैं क्यों हो रहा है, ऐसा क्या, ऐसा क्या, वैसा क्या, अनेक संकल्पों में उलझ जाते हैं, संकल्पों की बहुत बड़ी क्यू लग जाती है। हमने दादी को देखा, कुछ भी हो रहा हो मीटिंग चलती, मीटिंग में सबकी राय ली जा रही है, वो बड़ी है हेड बैठी है, चुपचाप मुस्करा रही है देख रही, कभी किसी बात को कट नहीं किया। कोई ने अगर पूछा दादी आपका विचार क्या है, तो 10 बातों का जवाब केवल 2 बातों में, ये होगा तो अच्छा है बस। बोल में इतनी मधुरता और बोल के साथ इतनी क्या कहें रहम की भावना जो हर आत्मा को टच हो जाती थी। मैं कल ब्रजमोहन भाई के साथ एक ग्रुप मिलाने के लिए ले गया था, तो उस ग्रुप को ब्रजमोहन भाई ने गुलजार दादी का फोटो दिखाया और कहा देखो इनका चेहरा कितना इनोसेंट है। वीआईपी जो आए थे ना अभी, उनको दिखाया और दिखा के बोलते हैं इनकी एक बात सुनाता हूं। ब्रजमोहन भाई ने सुनाया, आप देखो पहले इस चेहरे को। कहती ये जब थी ना, जब बाबा ने मुरलियां चलाई बेगरी पार्ट के बाद कि बच्ची तुमको जाकर के लखनऊ में सेंटर खोलना है, क्योंकि लखनऊ का ही ग्रुप था, तुमको जाके लखनऊ में सेंटर खोलना है। लखनऊ कहाँ है पता नहीं दादी, जाना कैसे वो भी पता नहीं है। और बाबा ने कहा जाओ बच्ची तुम जाओ लखनऊ में सेवा करके आओ, गवर्नर हाउस में सेवा करके। कहती वो ट्रेन में बैठ गई और ट्रेन में बैठने वाले वो सब बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, और दादी उनके बीच में गई। इतनी पवित्र आत्मा, 14 साल तक जिसने केवल भगवान के गोद में खेला, अब उसके बाद बाबा ने उसको सेवा पर भेजा, तो ट्रेन के डिब्बे का माहौल देख करके वो तंग हुई और अजमेर में उतर गई। जाना लखनऊ है, उतर गई अजमेर में। अजमेर में उतर करके सीधा स्टेशन मास्टर के पास गई और स्टेशन मास्टर को कहती है तुम्हारी ट्रेन में देखो क्या है, इतना लोग बीड़ी पीते हैं, इतना गंदगी करते हैं, मैं तो इसमें नहीं बैठ सकती। दीदी कहाँ जाना है आपको? अब उनका रुहाब, उनका भोलापन, उनका एक चेहरा पवित्रता की लाइट, और स्टेशन मास्टर देखकर कहाँ जाना दीदी आपको? मुझे लखनऊ जाना है। आपके पास पैसा है? मैं फर्स्ट क्लास का टिकट दे देता हूँ, उसमें नहीं कुछ, मैं पैसा नहीं जानती क्या होता है, मेरे पास पैसा नहीं है। अब बताओ क्या इनोसेंट होगी, कोई पैसा नहीं है और जाना है लखनऊ। स्टेशन मास्टर देखते कहता अच्छा ठीक है, मैं अपनी तरफ से टिकट बना के आपको देता हूं, आप चले जाओ। टिकट बना के उसने दिया, फर्स्ट क्लास में बिठा करके लखनऊ भेजा। और ये ब्रजमोहन भाई ने सुनाया। दूसरी बात सुनाई, जब वहां पहुंची, रिक्शे पर बैठी, पैडल रिक्शा होता यूपी में, पैडल रिक्शे पर जा रही थी, उसको बोला मुझे गवर्नर हाउस में ले चलो। अब ये छोटी छोटी बच्चियां गवर्नर हाउस में ले चलो, क्या करोगे दीदी वहां? मुझे ले चलो वहां पर। वहां गई और वहां पर बोला हमको गवर्नर साहब से डायरेक्ट मिलना है। भाई गवर्नर ऐसे कैसे मिलेगा, कोई अपॉइंटमेंट है? कुछ नहीं है, मैं नहीं जानती, मुझे बाबूजी से मिलना है। अब सब समझा बाबूजी से मिलना कोई संबंध होगा भाई, बाबूजी से मिलना है। अब बाबूजी के पास पहुंच गई सीधा ही और बाबूजी को बोलती है बाबूजी मुझे यहां पर एक कमरा चाहिए, मुझे सेंटर खोलना, बाबा ने मुझे भेजाया। बहुत भोलेपन से एकदम सरल मधुर, वो मधुर मिठास जो थी उसको घायल कर गई। थोड़ी देर में कहता अच्छा कभी नहीं सोचा हो कि गवर्नर हाउस में उसको कमरा मिलेगा सेवा के लिए, और उसने फटाफट चाबी दे दिया, जाओ अच्छा दीदी इसमें खोलो। ये मधुरता की, ये दिव्यता की कमाल थी। इतनी सरल, इतनी नेचर इजी थी जो हर एक को मोहित कर दे, लेकिन वो पवित्रता की पर्सनैलिटी थी। जरा भी कोई बुरी दृष्टि से नहीं देख सकता है, बहुत पवित्र शुद्ध है कुमारी, बिल्कुल इनोसेंट, बिल्कुल प्योर शुद्ध। उसका जो आभा मंडल है, उसका जो ओरा है पवित्रता का, वो बाबा के साथ जो लगन है, प्यार है, वो लोगों को प्रभावित करता है। तो दो चीजें जो आत्मा ने बचाई, एक संकल्प की शक्ति, दूसरी बोल की शक्ति। अब बोलने वाले बोलते हैं, क्या क्या बोल जाते हैं, भाषण करेंगे, अच्छी बातें भी बोलेंगे तो भी इतना बोलेंगे जो लोगों को समझ में ना आए, आधा ऊपर से निकल जाए। और जहां अधिक बोला जाता है वहां कुछ न कुछ व्यर्थ मिक्स हो जाता है। इसलिए दादी की बोल की और संकल्प की एनर्जी को भगवान ने 48 साल यूज किया। कितने घंटे बोला होगा बाबा ने उनके द्वारा, सोचने की बात है। अगर वो एनर्जी नहीं होती तो बाबा ने एक बार कहा था अच्छा इस बच्ची ने एनर्जी नहीं बचाई होती तो बाबा इसकी एनर्जी को यूज नहीं कर सकता था, उसने बचाई और भगवान ने यूज कर ली। हम सभी भी वर्तमान समय अगर सचमुच स्वीट बनना चाहते हैं तो ध्यान देना, संकल्प और बोल की एनर्जी को जाने नहीं दो। मैं बहुत ध्यान रखता हूं, जो मुझे काम की चीजें वही मुझे सोचनी है, ऐसे नहीं जो आया सोच रहे हैं, जिधर आया सोच रहे हैं बोल रहे हैं। कम सोचो, जो जरूरी है वही सोचो। संकल्प शक्ति पर अगर हमारा कंट्रोल है, ध्यान है, तो संकल्प हमारे सिद्ध होने लगते हैं। और संकल्प अगर बहुत शुद्ध और पवित्र है, आप कुछ भी किसी के आगे नहीं बोलो, आपका आभा मंडल, आपका चेहरा देख करके लोग आपसे पूछेंगे आप कहां से आए, आप क्या करते हैं, आप कौन हैं। तो बाबा अपने बच्चों को ऐसा स्वीट बनाना चाहता है जिसके अंदर जरा भी अंदर एक और बाहर दूसरा रूप ना हो। कई बार हम बाहर से तो बहुत अच्छा दिखाते हैं, हम बड़े योगी हैं, बड़े तपस्वी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर युद्ध में समय जाता है। बहुत अंदर अंदर इधर उधर के ख्यालात चलते हैं। कलयुग में व्यक्ति की चाहनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, और अधिक चाहनाएं हैं तो अधिक सोचना पड़ेगा, अधिक करना पड़ेगा, चाहनाओं की पूर्ति के लिए कुछ पाप भी करना पड़ेगा। और जहां पर कोई विकर्म पाप कर्म हो गए, जिस आत्मा ने श्रीमत का उल्लंघन कर दिया वो कभी स्वीट बन ही नहीं सकती। अगर स्वीट बनना है तो आज बाबा ने कहा है मुरली के अंदर, शिव बाबा श्री श्री है, तुम श्री श्री नहीं कहला सकते हो। अगर वो स्वीट है तो श्री है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। अगर मैं आत्मा श्रीमत पर चल करके श्रेष्ठ कर्म कर रही हूं तो मैं स्वीट हूं। अगर श्रीमत में जरा भी मन मत पर मत किसी भी देहधारी की मत को मिक्स कर दिया तो स्वीटनेस खत्म हो जाएगी। इसलिए बाबा अपने बच्चों को अपने समान बनाना चाहता है, सरल भोले। एक सरलता का उदाहरण मैं एक दादी का सुनाता हूं, शांतामणि दादी का। शांतामणि दादी को कुछ लोगों ने देखा होगा, मम्मा की मौसेरी बहन थी, बिल्कुल सेम ट्रू कॉपी। मम्मा को नहीं देखा, शांतामणि दादी को देख लो, चलना बैठना बोलना मुस्कराना, शांतामणि दादी बिल्कुल कांपी थी उनकी, लेकिन इतनी सरल, इतनी सरल। कभी भी उसने, एक दिन मैंने ऐसे कहा, दादी सभी लोग फ्लाइट में जाके घूम के आते हैं, आपको संकल्प नहीं आता मैं भी एक बार बैठूं? बाबा बिठाएगा तो बैठेंगे, दादी बहलेगी तो जाएंगे, कहीं नहीं गई। कहां बैठी? जो दादी ने कहा, जैसा बड़ों ने कहा, कभी भी ये नहीं कहा, दादी ये सेवा मुझे दे रही हो, ये कमरा मेरे को दे रही हो, इतना छोटा सा कमरा, एक ही चारपाई, खड़े होने की भी जगह नहीं, और सेवा क्या मिली? जो सेवाधारी आते हैं उनको संभालने की सेवा मिली, किसको क्या सेवा देनी है वो सेवा लिया, और अंत तक वही सेवा करती रही। ये नहीं कहा ये सेवा दादी मेरे को करनी है क्या। बाद में उनको मुरली सुनाने का चांस मिला, बहुत प्यार से मुरली सुनाती थी बाबा की, लेकिन कोई भी अपेक्षाएं नहीं है। अगर व्यक्ति की अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं तो अपेक्षाएं कहीं न कहीं गलत कर्म करा देती हैं। इसलिए ध्यान देना, हमारी अपेक्षाएं हमारी कामनाएं बहुत सीमित हों, जो जरूरी है वही चीज चाहिए, ऐसे नहीं ये भी हो ये भी हो ये भी हो, इससे भेंट किया उससे भेंट किया और भेंट करते करते उसमें उलझ गए, कहाँ स्वीटनेस रहेगी, भाग दौड़ की जिंदगी बन जाएगी। वो सरलता, वो मधुरता, वो नम्रता, वो दिव्यता, वो स्वीटनेस में स्वतः आ जाती है। एक स्वीट शब्द नहीं है। दादी हम मुरली पढ़ती थी, हमारी जानकी दादी जी जब मुरली पढ़ती थी, बहुत प्यार की शिक्षाएं सबको सुना के कहती थी, दिल होती इस मुरली को खा जाऊं, इतनी मीठी है, इतनी मीठी है। मेरे दादी ये भी मीठी है क्या है? लेकिन बाबा की शिक्षाएं इतनी मीठी हैं जो अंदर संभाले। तो हम सब ध्यान दें कि बाबा ने हम सबको संगम युग पर जो मीठा बनाया है उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है। आप लोगों ने सपेरा देखा है? किसने किसने देखा है सपेदे, सपेदे जो होते हैं ना सांप निकालने वाले, उनके पास एक बांसुरी होती है, वीणा, वीण बोलते हैं, वीण। और वो जब वीण बजाता है बहुत धुन से बजाता है, लगन से बजाता है, और कहीं भी छिपा हुआ इधर उधर सांप होता है तो उसकी वीण की धुन पर सामने आके डांस करने लगता है। और जब डांस करके बिल्कुल मगन हो जाता है तो सपेरा उसको ऐसे हाथ से पकड़ लेता है, उसको काटता नहीं, क्योंकि इतना मगन हो गया, नाचने लगा, और फिर उसमें के जहरीले दांत उसको निकाल करके अलग कर देता है, उसका जहर खत्म कर देता है, और फिर उस सांप को अपनी टोकरी में रह करके फिर कमाई करता है, नचाता है उसको। क्या हमारे बाबा ने ऐसा ही तो नहीं किया है? कितने जहरीले दांत वाले हम सब, हमको नचाया पहले मुरली सुना सुना करके, बीन बजा करके। अगर मगन कोई नहीं हुआ तो उसका सांप का दांत निकलेगा नहीं, अगर मुरली पर मस्ताने नहीं बने तो कभी भी आपके अंदर की जहरीली चीजें निकलेंगी नहीं। सुन लो, मुरली रोज सुनो। लेकिन मस्तानी गोपियां, कुछ नहीं सोचा उन्होंने, कभी भी उनके तर्क वितर्क नहीं होते, बाबा ऐसा क्यों कहता, ऐसा क्यों कहता, ऐसा क्यों कहता, अरे भगवान कह रहा है। उस भावना से, उस श्रद्धा से सुनती हैं और मगन हो जाती हैं, फिर बाबा उनके बहुत प्यार से विषैले दांत को अलग कर देता है, और फिर उनसे कितनी सेवाएं कराता है, डांस कराता है, बच्चे जाओ सेवा करो। तो बाबा ने जो हमें बहुत सुंदर ज्ञान मुरली सुनाई है, उस मुरली की धुन पर इतने मस्त हो जाओ, मगन हो जाओ, भगवान हमारे लिए क्या कह रहा है, इसके लिए कह रहा है, उसके लिए कह रहा है। कई मुरली सुनते हैं ना, सुनते सुनते सोचते ये पॉइंट जो है ना फुलाने के लिए बड़ी अच्छी है, उसके लिए बहुत अच्छी है। कई नोट्स लेंगे, ये बात हम उसको लिख करके भेज देंगे, लेकिन कभी ये सोचते ये मेरे लिए भी है, मुझे इससे बदलना है, मुझे अपने को चेंज करना है। दूसरों को बदलने के लिए तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ बदल करके दिखाना है, मेरा कड़ुआपन, मेरा खारापन समाप्त हो जाए। मैं 52 ईयर्स से मधुबन में रहता हूं, एक भी बार इस मुख से कटु वचन नहीं निकाले, ये मेरे को अपने आप में रहता है। इतना मैं अटेंशन रखूं, कुछ भी है नीचे पट होगा, जहां संगठन है, सेवाएं हैं, परिवार है, हजार का संगठन है और कई काम होते हैं, मैं अपने मुख से एक भी अपशब्द न बोलूं। हर एक आत्मा के अपने संस्कार है, हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, हर एक आत्मा की अपनी विशेषताएं हैं। मैं उनको देख करके और मैं चिढ़ करके कोई उनको जवाब दूं, गुस्से में आ जाऊं, चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, कोई बात अच्छी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्रोध में आकर के अपशब्द बोल करके उसको दुखा दें, उसके दिल को दर्द दे दें, ये बहुत बड़ा पाप है, यही कटुता है। हमारे जीवन में वो मधुरता, वो सरलता हो, कैसी भी बातें हो संगठन में, हर आत्मा को भगवान ने चुना है, उसने अपने कार्य में लगाया है। हर एक आत्मा कुछ न कुछ विशेष है। अब उस विशेषता को देखने की बजाय ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये लायक नहीं है। एक बार की बात सुनाता हूं, दादी जानकी के सामने मैं गया, कुछ ऐसे ही पत्र थे, कुछ ऐसी बातें थी, तो मेरे मुख से निकला, दादी ऐसी ऐसी बातें हैं, ये यज्ञ के लायक नहीं है। कहते क्या बोलता है, निकाल दें इसको, निकाल दिया जाए। मैं कहा दादी यज्ञ में तो ये रहना ठीक नहीं इसका। बहुत प्यार से बोली, बहुत मुस्कुरा के, इतना प्यार से बोली, अच्छा मान लो इसको यज्ञ से तुमने निकाल दिया, हम सब ने निकाल दिया, ऐसे बोले, हम सब ने निकाल दिया, तो बाहर जाकर के वो सुधर जाएगा? जब इस भूमि पर वो सुधर नहीं पा रहा है तो बाहर जाके सुधर जाएगा? कभी ये संकल्प नहीं करना, यहां सुधारो, यहां कोशिश करो सुधारने की, यहां जो कर सकते हो उसके लिए योग करो, शुभ भावना रखो, ये करो वो करो। अगर वो नहीं सुधरने वाला तो अपने आप चला जाएगा, हमें निमित्त नहीं बनना है उसके प्रति, हमें कोई अशुभ सोचना नहीं है, हर आत्मा का अपना पार्ट है, हर एक का अपना हिसाब किताब है, हर एक आत्मा अपने अपने कर्मों का फल भोग रही कर रही है। अगर कुछ पुण्य किए हैं तो पुण्य के कारण वो यहाँ रही है, अगर हम कोई निमित्त बन जाए उसको जबरदस्ती यहाँ से बाहर करने के और फिर वो जाकर के गलत काम करेगी तो उसका बोझ भी तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। ये हमारी दादियों ने सिखाया है। वैरायटी है, एक जैसे तो कोई हो भी नहीं सकते। बाबा कई बार कहते हैं ना, अलग अलग जंगल की काठियों को इकट्ठा किया है, वन वन की काठी, और उस काठियों को एक करके एक ही उसमें बांधा है, तो वैरायटी तो रहेगी। वैरायटी स्वभाव, संस्कार, उनके काम, उनके संकल्प, उनके विकल्प, सब कुछ वैरायटी है। और बाबा बनाता है, अपने समान बनाना चाहता है, बनेंगे लेकिन सब नंबरवार बनेंगे, एक जैसे नहीं बनेंगे सब। हम सब जिनके भी निमित्त हैं, जो हमारे संबंध संपर्क में आए, उन सब के पद ऐसी शुभ भावना हो, कल्याण की भावना हो, कोई भी कारण से वो मेरे से अपसेट ना हो जाए, मेरे कारण कोई अपनी ईश्वरीय जीवन से विमुख हो जाए, दूर चला जाए, ये बहुत बड़ा बोझ है। ऐसी अगर कोई भी संकल्प में भी कटुता है, किसी के प्रति भी बैर भावना है, बदला लेने की भावना है, द्वेष भावना है, घृणा भावना है, हम चेक करें, वही कटुता है, और उसको अपने आप से प्रतिज्ञा करके निकालने कि ये मुझे नहीं रखनी। हर आत्मा विशेष है, हर आत्मा महान है, जो इस सृष्टि नाटक में खेल खेलने आई है, सब में कुछ न कुछ विशेषताएं हैं। अगर ये विशेषता देखने का चश्मा हर एक पहन करके रखे, कभी भी परिवार में झगड़ा नहीं होगा। मैं हमेशा परिवार वालों को कहता हूं, आपके परिवार में अगर 5 सदस्य हैं और 5ों में अगर आप एक जैसी अपेक्षाएं रखोगे, कभी भी पूरी नहीं होंगी। वो सबके अलग अलग नेचर है, हर एक अलग अलग संस्कार लेकर के आपके घर में आया है, उसकी जो विशेषता है, अगर उस विशेषता को देख करके कोई इंजीनियर बनना चाहता है, क्या हुआ, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई किसान बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, जैसे भी बच्चे हैं, जो उनकी इच्छा है, जबरदस्ती कोई के साथ नहीं कर सकते, नहीं मैं तो सबको डॉक्टर ही बनाऊं, हो सकता है क्या? वो पिछले जन्म के संस्कार लेकर के आपके घर में आया। कोई सोचेगा हम तो फिल्म क्षेत्र में चले जाएं, और आप कहते हो हमारे घर में तो कोई गया ही नहीं, ये तो हमारा नाम बदनाम होगा। अब उसके संस्कार हैं, वो संस्कार के अनुसार जाएगा वो, आप जबरदस्ती करो वो तो जबरदस्ती चला जाएगा। इसलिए अगर सचमुच अपने परिवार को सुखमय बनाना है तो हर आत्मा की क्वालिटी क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उनको बहुत साक्षी होकर के परखो, परख करके जो उसकी डिमांड है, जिस प्रकार की उसकी इच्छा है, उसी प्रकार के उसको कार्य में लगाओ। वो विशेषताएं आपके घर को स्वर्ग बना देंगी। लेकिन अगर जबरदस्ती किसी से किया, नहीं इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, तो उसके अंदर कलह क्लेश पैदा हो जाएगी, वहां पर झगड़े शुरू हो जाएंगे, वो मधुरता खत्म हो जाएगी। अगर मधुर व्यवहार करना है तो हर आत्मा की हर विशेषता को समझ करके उसी विशेषता के अनुसार उसको हम सेवा दें, उसी विशेषता के अनुसार उससे हम बात करें, उसके संपर्क संबंध में आए। अगर जरा भी नीचे ऊपर किया तो वहां पर आपसी टकराव पैदा हो जाएंगे। तो हम सब ध्यान दें, हमारी दादियों ने हमें बहुत कुछ पढ़ाया है, उनके रूप को देख करके। एक और दादी का बताता हूँ बात, बाबा उनको बहुत प्यार से कहता था, ये मेरी बच्ची संतरु है, संतरे जैसी नरम है, मुलायम है, मीठी है। संतरी दादी को जब मैं आया हूँ शुरू शुरू में, वो मधुबन में रहती थी, और मधुबन में पूरा ही जो हम लोगों को कपड़े मिलते हैं, जो हमारे को सामान मिलता है, उसकी इंचार्ज थी। बहुत सीधी, बहुत सरल। एक दिन दीदी ने पता नहीं उनको क्या बोला कि राजू भाई को पहले 71 की बात सुना, तो राजू भाई को अपने पास बुलाओ और उसको बोलो तुम अपनी अटैची लेके आओ, मैं अटैची लोहे की लाया था छोटी सी, उसमें लोहे का चलता था छोटा सा। मैं तो डर गया, पता नहीं कोई जांच होने वाली है क्या। भाई अटैची कमरे से ले आओ। संतरी दादी मेरे बहुत प्यार से आई, बहुत बोली, भैया तुम्हारे पास अटैची होगी ना? हमने कहा हाँ दादी, अटैची ले आओ। अब अटैची लेके गया, कहती यहां रख दो, फिर बाद में आना तुम मेरे पास। अब मैं तो अंदर डर गया, पता नहीं हमने तो कुछ किया नहीं, यहां कोई जांच होती होगी भाई, कोई कोई चीज चोरी हो गई हो, कोई इधर उधर हुआ हो, पता नहीं क्यों बुलाया। हमारे संकल्प चलने लगे, कहते नहीं सोच नहीं, कुछ सोचना नहीं, कुछ कुछ नहीं है, दीदी ने मुझे कहा है इसलिए मैंने अटैची मंगाई तुम्हारी। अब मैं अटैची छोड़ के चला गया। दूसरे दिन आया, हमने कहा दादी जाना है मुझे। हाँ हाँ तेरी अटैची बहुत सुंदर सजाई हुई है, तुम देख ले खोल के। उसमें हमारे लिए 8 ड्रेस टेरी काट की पैंट और सूट थी। दादी ये हम क्या करेंगे, हम तो कुर्ता पजामा पहनने वाले। अरे अरे तुम मधुबन से जा रहा है ना, तुम रोज नई नई ड्रेस पहनना। हमने कहा दादी क्या करेंगे, और उस समय बेगरी पार्ट था, ऐसा नहीं सब बहुत कुछ था यज्ञ में। इतनी सरलता से मुझे वो ड्रेस जबरदस्ती दे दिया। हमने कहा दादी बड़ी बड़ी हैं, मेरे साइज की नहीं। नहीं नहीं तुम ठीक करा लेना जा करके, तुम रोज नई नई ड्रेस पहन के घूमना। मैंने कहा ये क्यों इतना दादी हमको फोर्सली बोल रही है, क्यों बोला होगा क्यों बोला होगा बताओ। क्या था कि दादियों को ये पता चल गया था, ये जो भाई है वो अपने परिवार में इकलौता है, और इकलौता होने के कारण इसको परिवार वाले छुट्टी नहीं देंगे मधुबन में रहने की। कहेंगे तेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, 3 के घर हैं, दुकान है, खेती है, तुम कहाँ एक आश्रम में जा रहा है, तुमको क्या वहां मिलेगा। तो दादियों ने एक मास के अंदर हमको इतना कुछ भर दिया, इतना दे दिया कि कोई भी कहे ही नहीं सकता है कि इनके पास कुछ नहीं है आश्रम में, बहुत कुछ है आश्रम के अंदर। बहुत प्यार से मेरे को दिया, मैं तो पहना नहीं, लेकिन फिर भी समझा करके कि कोई भी आएगा, कोई भी पूछेगा तो ये तो नहीं कहेगा कि आश्रम में कुछ नहीं है, आश्रम भरपूर है, तुम बड़े दिल से सबको बताना दिखाना जा करके, कोई तुमको रोकेगा नहीं, फिर नहीं तो सब रोकेंगे। तो एक ऐसा पालना का रूप, इतना प्यार, इतना स्नेह, ये ऐसा नहीं सोचा ये तो एक महीना सेवा किया है इसको हम क्यों सौगात दें, एक सौगात दे दो बस, क्या जरूरत है। लेकिन बड़े दिल से इस आत्मा को आकर्षण करना है, इसके परिवार से छुट्टी लेनी है, तो इसको इतना भरपूर कर दो जो लोगों को लगे इसके पास कोई कमी नहीं। बहुत बड़े दिल से मैं ले गया, दिया, कुछ पहना एक दो चीजें, लेकिन फिर वापस जब आ गया तो सब वापस सरेंडर कर दिया, यज्ञ में दे दिया। और इतनी सरल भोली थी, सीधी साधी एकदम। फिर कलकत्ता में रहने लगी, थोड़ा दमा की तकलीफ थी, यहां ऑक्सीजन की कमी के कारण बाबा ने उनको निर्मल शांता दादी के पास भेज दिया। मालूम होगा ना संतरी दादी कौन है, कोई कोई जानते हैं, जानते हो कौन थे? नहीं जानते हैं, सब पुराने नहीं है। हमारे भाऊ थे ना विश्व किशोर दादा, जो बाबा के बिल्कुल राइट हैंड थे, बिजनेस में भी बाबा के पार्टनर जैसे संभालते थे साथ, और बाबा के भाई के लड़के थे, भतीजे थे, और वो बाबा ने ही शादी कराई थी संतरी दादी। और संतरी दादी जब आई बहुत एक्यूरेट संदेश लाती थी, ट्रांस में जाने लगी, बाबा की फेवरेट संदेशी थी, इतनी सरल, इतनी नम्र, इतनी व्यवहार में शुद्धता, सदा मुस्कुराते हुए, कभी भी ऐसे जोश में तो बोल, कभी बोल सुनाई नहीं होगा, इतनी मिठास थी। हर एक आत्मा की विशेषता, हर एक आत्मा को आगे बढ़ाना। लास्ट दिनों में रोज अमृत वेले जब उठती थी तो ट्रांस में जाती थी, 4 बजे उठते ही बाबा के पास जाती थी, शाम के समय मेरे को बुलाया 9 बजे कमरे में, यहाँ इंद्रप्रस्थ में रहती थी। मेरे को कहती, राजू तुम्हारे पास बहुत माल खजाना है ना, तुम ले आओ मेरे लिए। माल खजाना समझते हो, मुरली, प्रश्न उत्तर, क्लासेस दादियों की। तो हमने कहा, दादी सवेरे दे देंगे ना, सवेरे आप जाओगे ना। तो मेरे को ऐसे देखने लगी, मेरा दिल है तुम अभी ले आओ। रात को 9 बजे अब मैं ऑफिस में गया, कुछ फोटोकॉपी करना था, कुछ किया, थोड़ा लिफाफा बनाया सारी क्लासेज मुरलियों की, और फिर रात को मैं 9:30-10 बजे देने गया। दिया लिया बड़े प्यार से, पूरी अटैची सजा करके रखी, सुबह जाना था कलकत्ता। और सवेरे सोए सोए, कब गई पता ही नहीं। असंध्या, वो जो उनके साथ बहन थी वो कहती, आज पता नहीं दादी ट्रांस में गई, वापस नहीं आ रही है। देखूं तो देखा हो तो ही नहीं, ऐसे ऐसे अव्यक्त हुई थी अचानक। आत्मा कैसे एकदम बिल्कुल किसी भी अटैच, किसी में भी अटैच नहीं, किसी स्थान से अटैच नहीं, किसी व्यक्ति से अटैचमेंट नहीं, कोई वस्तु से अटैचमेंट नहीं, केवल बाबा और बाबा की पढ़ाई। अंत मत्ती सोगति, ऐसी जो सरल आत्माएं हैं, स्वीट आत्माएं हैं, बिल्कुल कोई के प्रति द्वंद भाव नहीं है जिनके मन में, वैर भाव, द्वंद भाव, संकल्पों में भी हलचल नहीं है, वो आत्माएं ऐसी गति को पाती हैं। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे अभी अटेंशन दो, जरा भी कोई सूक्ष्म में भी कड़ुआपन है किसी भी विकार का, लोभ का है, मोह का है, अहंकार का है, काम क्रोध लोभ, ये 5 विकार तो हैं ही, इनकी जो रचना है, इनकी जो वंशावली है बहुत बड़ी है, उसका भी कोई अंश है तो सूक्ष्म रीति से चेक करो, एकांत में जाकर के चेक करो, अपने आप से बात करो कि ये कड़ुआपन है, ये मुझे निकालना है, मुझे स्वीट बनना है। स्वीट की एक कहानी और सुना देता हूं मैं। जगदीश भाई बड़े प्यार से कहानी सुनाते थे, कहते थे 2 पहाड़ थे, एक चीनी का और एक नमक का, दोनों एक जैसे थे। कुछ चींटियां चीनी के पहाड़ पर रहती थी, कुछ चींटियां नमक के पहाड़ पर रहती थी। तो एक दिन आपस में मिली तो दोनों ने वर्णन किया कि ये सफेद चीज जो है बड़ी मीठी होती है। तो दूसरी नमक वाली कहती, अरे कहां मीठी होती है, वो तो सारा खारा खारा होता है, खारा खारा होता है। तो बोला, नहीं तुम हमारे पहाड़ पर आओ, हम आपको मिठास का अनुभव कराएंगे, क्या होता है चीनी, क्या होती है वो सफेद चीज, क्या होती है। तो ऐसे जो नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी थी, उसको निमंत्रण दिया अपने पहाड़ पर आने का, और नमक आई, पूरा पहाड़ घूम लिया। फिर बाद में लास्ट में उससे पूछा, तुमको कुछ लगा, मिठास आई, अनुभव हुआ? बोले, क्या तुम मीठा मीठा कर रही है, कोई मीठा नहीं है, जैसा मेरा नमक का पहाड़ है ऐसा ही पहाड़ है। अब चीनी के पहाड़ पर घूमने वाली को भी चीनी का अनुभव नहीं हुआ, उसका कारण क्या था? क्योंकि उसने अपने मुंह में नमक की ढेली रखी हुई थी। अब नमक की ढेली मुंह में रखेगी तो नमक ही खाएगी ना, नमक ही चूसेगी, उसने एक बार भी टेस्ट नहीं लिया चीनी का। तो कई लोग ऐसे मिठास के पहाड़ पर भी आकर के अगर वो नमक का खारापन छोड़ा नहीं तो उस मिठास का अनुभव नहीं कर सकते, भले चीनी के पहाड़ पर आप आ गए हैं, लेकिन अगर वो नमक नहीं निकाला है तो उसका अनुभव नहीं होगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी तरह से भट्टी कर रहे हो, अभी चेक करना, बहुत सूक्ष्म चेकिंग करना, और जो भी ऐसा कड़ुआपन खारापन जहर विष हो अंदर, बाबा को अर्पित कर देना। और उसकी विधि यही है, मुरली में मस्ताने हो जाओ, बाबा अपने आप जहर निकाल देगा, फिर डांस कराएगा, फिर खूब सेवा करेंगे। सेवाएं नहीं हो पाती हैं, कोई अंदर उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, बाबा मिलने के बाद भी अगर वो नशा और खुशी नहीं है तो जरूर कहीं ना कहीं से वो दांत अभी अंदर रहा हुआ है, जहर का दांत अभी निकला नहीं है। तो हमें बहुत गुप्त रीति से चेक करना है और जो कुछ है बाबा के आगे अर्पित कर देना। ओम शांति।
मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। बनाते बाबा, बनाते बाबा आप बड़े मीठे हैं मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं।